साइबर अपराध की दुनिया ये तो लगातार बदल रही है। अपराधी हर दिन कुछ नया, कुछ चौंकाने वाला तरीका निकाल ही लेते हैं।
हाँ बिल्कुल।
तो आज हमारे साथ एक साइबर विशेषज्ञ है और हम उनके कुछ अनुभवों से सीखेंगे कुछ ऐसे किस्से जो दिखाते हैं कि ये अपराधी असल में कितने शातिर हो सकते हैं।
जी
आपने तो मतलब गंभीर से गंभीर मामले देखे हैं, हत्या तक के मामले सुलझाए हैं और रिकवरी भी सुनने में आया है, करीब 750-800 करोड़ की रिकवरी में मदद की है।
हाँ कोशिश रही है, कुछ मामलों में सफलता मिली है अच्छी। एक केस में तो 150 करोड़ से भी ज्यादा रिकवर हुए थे।
क्या बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अपराधी सोचते कैसे हैं, लोगों को फंसाते कैसे हैं, और ये भी कि कभी कभी लगता है हमारी कोई गलती नहीं फिर भी शिकार बन जाते हैं।
सही कहा आपने, कई बार बिना गलती के भी होता है।
तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये सब।
बिल्कुल। देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपराधी जो हैं वो टेक्नोलॉजी अपनाने में बहुत बहुत तेज होते हैं, अक्सर हमसे आपसे पहले।
हाँ ये तो है।
एक पुराना किस्सा याद आता है पेरिस का। एक महिला को कॉल आया, डराने वाला कॉल था।
कैसा कॉल?
कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है और फिरौती मांगी गई।
ओह।
और उसे यकीन दिलाने के लिए अपराधी ने क्या किया, घर की चीजों का जिक्र किया, जैसे दीवार पे वो पेंटिंग लगी है या कोने में वो फ्लावर पॉट रखा है।
अरे
तो महिला को लगा होगा कोई देख रहा है घर के अंदर से।
बिल्कुल।
उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी बेटी खतरे में है और कोई घर पर नजर रखे हुए। पर बाद में जब जांच हुई
तो
क्या निकला, पता चला कि उसके फोन में एक पुराना गेमिंग ऐप था, जैसे पहले पोकेमॉन गो आया था कुछ वैसे ही।
अच्छा गेमिंग ऐप।
हाँ, और वो ऐप चुपके से बैकग्राउंड में फोन के कैमरे से तस्वीरें ले रहा था।
क्या? और भेज रहा था?
हाँ, वो तस्वीरें अपराधी के सर्वर पर जा रही थी।
लेकिन सिर्फ तस्वीरों से लोकेशन कैसे पता चली कि वो उस वक्त कहाँ है घर में?
ये और भी चौंकाने वाला था। वो ऐप तस्वीरों के साथ साथ वाईफाई सिग्नल की स्ट्रेंथ भी भेज रहा था।
वाईफाई सिग्नल? उससे कैसे?
जैसे हम राउटर के पास होते हैं तो सिग्नल स्ट्रांग होता है, दूर जाते हैं तो वीक हो जाता है ना।
हाँ हाँ।
तो बस उसी सिग्नल लेवल के डेटा से अपराधी ने अंदाजा लगा लिया कि जब वो फोन पर बात कर रही थी तो घर के किस कोने के पास खड़ी थी।
अविश्वसनीय, मतलब वाईफाई सिग्नल से लोकेशन ट्रैकिंग।
हाँ, ये दिखाता है कि वो कितने अनपेक्षित तरीकों से आपकी जानकारी निकाल सकते हैं।
ये तो वाकई डराने वाला है। और ऐसे ही चौंकाने वाले तरीकों की बात करें तो एक और मामला सुना था मैंने। एक बिजनेसमैन थे, उनके अकाउंट से 7.5 लाख रुपए निकल गए।
हाँ, ये भी एक केस था।
और कहते हैं सिर्फ कुछ मिस्ड कॉल्स आई थी उनको बस।
जी, शुरू में शक गया था पेगासस जैसे किसी सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर पर, क्योंकि मिस्ड कॉल से फोन हैक करना ये पेगासस की पहचान रही है।
हाँ, महंगा और खतरनाक।
बिल्कुल। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो कहानी कुछ और निकली। फोन की जो एक्टिविटी लॉग होती है गूगल डैशबोर्ड पर दिख जाती है।
अच्छा, उससे पता चला?
हाँ, उससे पता लगा कि पैसे निकलने से कुछ दिन पहले एक वीडियो एडिटिंग ऐप फोन में इंस्टॉल हुई थी और फिर अनइंस्टॉल भी कर दी गई।
वीडियो एडिटिंग ऐप, उसका क्या लेना देना?
उस ऐप ने इंस्टॉलेशन के वक्त SMS पढ़ने की परमिशन ली थी।
ओहो, SMS पढ़ने की, मतलब OTP?
एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात ये कि ये ऐप किसी बाहरी हैकर ने नहीं डाली थी।
तो फिर किसने?
घर के ही सदस्य ने, उनके अपने 13-14 साल के बेटे ने।
क्या? बेटे ने? क्यों?
बच्चे को ऑनलाइन कोई मिला, शायद लड़की बनकर बात कर रहा था, उसने बच्चे को रोब्लॉक्स गेम के 200 पॉइंट्स का लालच दिया।
सिर्फ 200 पॉइंट्स?
हाँ, सिर्फ 200 पॉइंट्स के लिए उसने कहा कि ये ऐप अपने पापा के फोन में डाल दो। बच्चे ने डाल दी। उस ऐप ने OTP पढ़े, अपराधी तक पहुंचाए और फिर खुद को डिलीट कर दिया।
अरे बाप रे, मतलब बच्चों को गेमिंग पॉइंट्स का लालच देकर इतना बड़ा फ्रॉड।
ये तो बहुत ही खतरनाक है।
बिल्कुल,
ये सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है।
तकनीक से ज्यादा भरोसे का गलत इस्तेमाल।
सही बात है।
तो OTP चुराने के ये तरीके तो हो गए, और भी कुछ है? जैसे कॉल फॉरवर्डिंग सुना है मैंने।
हाँ, कॉल फॉरवर्डिंग एक और आम तरीका है। इसमें अपराधी आपको कॉल करेगा, कहेगा कोई कुरियर आया है या कोई गिफ्ट है, और उसे कंफर्म करने के लिए आपको एक कोड डायल करना है।
कोड? कैसा कोड?
वो कोड अक्सर हैश या स्टार से शुरू होता है। जैसे ही आप वो डायल करते हैं आपके फोन की कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाती है अपराधी के नंबर पर।
मतलब सारी कॉल्स उसके पास जाने लगेंगी, बैंक OTP वाली भी?
हाँ, बैंक से आने वाली OTP कॉल्स भी। इसीलिए व्हाट्सएप जैसी एप्स में 2-स्टेप वेरिफिकेशन लगाना बहुत जरूरी है, सिर्फ OTP पर निर्भर ना रहें।
अच्छा, वो पिन वाला जो होता है?
हाँ, वो पर्सनल पिन, वो कॉल फॉरवर्ड होने पर भी सेफ रहता है।
ये तो जरूरी है। और एक वो स्क्रीन शेयरिंग वाला मामला क्या था?
हाँ, स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड। मुंबई में एक साहब टैक्सी बुक कर रहे थे ऑनलाइन, वेबसाइट पर पेमेंट बार बार फेल हो रही थी। उन्होंने वेबसाइट पर दिए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया। अब वो नंबर तो नकली था, अपराधी का था।
ओके।
उसने कहा मैं मदद करता हूँ, आप गूगल मीट पर आइए और अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए।
स्क्रीन शेयर पेमेंट के लिए?
हाँ, मदद के बहाने। जैसे ही उन्होंने दोबारा पेमेंट करने के लिए अपनी कार्ड डिटेल्स डाली और ओटीपी आया,
वो सब लाइव देख रहा था अपराधी।
बिल्कुल, स्क्रीन शेयर थी तो उसने सब कुछ, कार्ड नंबर, सीवीवी, ओटीपी सब लाइव देखा और पैसे निकाल लिए।
ये तो मतलब मदद के नाम पर धोखा।
सही, भरोसे का गलत इस्तेमाल।
और आजकल एक और चीज बहुत सुनने में आ रही है, डिजिटल अरेस्ट। ये क्या है? ये तो नाम ही डरावना है।
ये बहुत ही गंभीर और डराने वाला तरीका है। इसमें लोगों से करोड़ों रुपए ठगे गए हैं।
करोड़ों? कैसे?
शुरुआत होती है एक आईवीआर कॉल से। ऑटोमेटेड वॉइस कहेगी, आपके नाम से एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स हैं या नकली पासपोर्ट मिले हैं।
अच्छा।
फिर कॉल ट्रांसफर होती है एक नकली पुलिस अधिकारी को। वो बड़े रॉब से बात करेगा, सीबीआई, ईडी, कस्टम्स, कई एजेंसियों का नाम लेगा, मामले को बहुत गंभीर बताएगा
ताकि इंसान डर जाए।
हाँ, बुरी तरह डर जाए। फिर कहेगा कि आपको फौरन स्काइप पर वीडियो कॉल पर आकर बयान देना होगा, नहीं तो अरेस्ट वारंट निकल जाएगा।
वीडियो कॉल पर?
जी, और वीडियो कॉल पर बाकायदा एक बंदा पुलिस की वर्दी में बैठा होगा, पीछे शायद पुलिस स्टेशन जैसा नकली सेटअप भी बना रखा हो।
ओ तेरी।
फिर वो पूछताछ का नाटक करेगा और कहेगा, जब तक जांच पूरी नहीं होती आप हमारे सर्विलांस में हैं, आप कैमरे के सामने बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, कॉल काटेंगे नहीं। इसे वो कहते हैं डिजिटल अरेस्ट।
मतलब घंटों तक कैमरे के सामने बंदी।
हाँ, कई कई घंटे। पीड़ित डर के मारे हिलता भी नहीं। फिर आखिर में मामला रफा दफा करने के नाम पर या जांच में मदद के नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी जाती है।
ये तो साइकोलॉजिकल खेल है पूरा। वर्दी, थाना, एजेंसियां, डर का पूरा माहौल।
बिल्कुल, तकनीक के साथ साथ मनोविज्ञान का बहुत गहरा इस्तेमाल है इसमें।
तो इन सब बातों से क्या सीख मिलती है? सिर्फ ये कहना कि ओटीपी शेयर मत करो, ये तो काफी नहीं लगता अब।
बिल्कुल नहीं, ये अब बेसिक बात हो गई है। असल मुद्दा है जागरूकता, इन बदलते हुए तरीकों को समझना। अपराधी सिर्फ तकनीक नहीं, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। डर, भरोसा, लालच, मदद करने की इच्छा, वाईफाई सिग्नल से लोकेशन ट्रैक हो सकती है, गेम पॉइंट्स के लालच में कोई बच्चा ऐप इंस्टॉल कर सकता है, खतरा कहीं से भी आ सकता है।
सही बात है। तो मतलब हर अनजाने लिंक, कॉल, मैसेज, ऑफर पर शक करना जरूरी है, थोड़ा रुककर सोचना जरूरी है।
हाँ, शक करना और वेरीफाई करना। कोई भी चीज जो थोड़ी भी अजीब लगे उसे क्रॉस चेक जरूर करें, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं।
ये वाकई सोचने वाली बात है। तकनीक और इंसानी मनोविज्ञान का ये जो गठजोड़ है, ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है
जी,
कि हमारी रोजमर्रा की डिजिटल आदतें जो हमें बड़ी सामान्य, बड़ी सेफ लगती हैं, उनमें से कौन सी ऐसी आदतें हो सकती हैं जो कल को इन अपराधियों के लिए अगला दरवाजा बन जाएं? शायद इस पर सोचना जरूरी है।
बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब भी लगातार बदलता रहेगा।